بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس کا کچھ مذاکرہ کرنے کا ارادہ ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم کو ایک خطبہ دیا اسے یہاں ایک بات وضاحت کر دوں ایک بات کی کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے نسبتاً کمزور ہے لیکن فضائل کے باب میں علماء نے اس کو مقبول مانا ہے کیونکہ اس طرح کی فضیلتیں اور بھی حدیثوں میں ملتی ہیں تو آخری دن تھا صحابہ کو آپ نے جو ہے نا خطبہ دیا خطبہ دے کر فرمایا قد اذلکم شہر عظیم ایک بہت بڑا مہینہ تم پر آیا ہوا ہے شہر المبارک یہ ایک بابرکت مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات اللہ پاک کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے جو شب قدر ہے کہ جس میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر سورہ قدر میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کیونکہ اس امت کی اللہ پاک نے عمریں کم رکھی ہیں گزشتہ جو امتیں ہوا کرتی تھیں ان کی عمر جو ہے نا وہ بڑی ہوتی تھی 150 سال 200 سال 500 سال 800 سال 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ 950 برس تک تو انہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے قوم کو مطلب یہ ہوا کہ عمر تو ان کی 950 سے زیادہ تھی بعض روایت میں کہ 1000 سال ان کی عمر تھی وہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک نے عالم ارواح کو ان کے اوپر منکشف فرمایا ساری ذریت کو انہوں نے دیکھا اللہ کے ہاتھ میں تو اس وقت جو ہے نا ایک شخصیت کو دیکھا کہ بڑی چمک رہی ہیں تو پوچھا اللہ پاک سے کہ یہ کون ہے تو فرمانے لگے کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں تو کہنے لگے کہ یا اللہ میری عمر کا کچھ حصہ جو ہے نا ان کو دے دیجیے ان کی عمر کتنی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ 40 سال ہے تو فرمایا کہ میری عمر کا کچھ حصہ ان کو دے دیجیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ویسے تو اللہ کا لکھا ہوا جو حصہ ہے پوچھا حضرت آدم نے کہ بھئی یہ تو بہت کم عمر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ عمر کم ہے لیکن اللہ نے جو لکھ دیا لکھ دیا تو ہوا یہ کہ بعد میں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا وقت آیا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے تو حضرت آدم نے کہا کہ بھئی تم تو میری موت سے پہلے ہی آ گئے میرا وقت تو لمبا تھا اور اسے روایتوں میں ہے کہ 60 سال پہلے فرشتہ آ گیا ان کے پاس تو فرشتے کو کہا کہ بھئی تم تو بہت جلدی آ گئے میری عمر تو لمبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء پر واضح فرما دیتے ہیں فرشتے ان کے پاس اجازت لیتے ہیں آ کر ان کے اعزاز میں اور اکرام میں تو پوچھا تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال جو ہے نا داؤد کو دے دیے تھے آپ کے بیٹے تو آدم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری عمر مجھے دے دو بھول گئے تھے وہ تو خیر اس امت کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم رکھی ہیں تو اس زمانے میں تو ہوتا تھا 800 سال اس وجہ سے بنی اسرائیل کے عابدوں کا جب ذکر ملتا ہے احادیث میں تو آپ نے سنا ہوگا واقعات میں احادیث کے اندر کے 500-500 سال کی عبادت کر رہا ہے وہ اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ عبادت کیسی کر رہے ہیں وہ حضور نے فرمایا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی سبحان اللہ 500 سال عبادت ایسی ہم تو 60 سال کی عبادت ہم سے نہیں ہو پاتی بھائی ہماری عمر کی 60-70 سال ہے اس میں سے 15 سال تو ہمارے بلوغ سے پہلے نکل جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا 50 سال ہمارے بچتے ہیں تو 50 سال کی زندگی کا آپ محاسبہ کریں ایک طرف بنی اسرائیل کے عابد ہیں 500 سال کی عبادت ہے سیکنڈ ایک سیکنڈ کے برابر لمحہ ایک لہجے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہے ایسی عبادت کہ اللہ پاک اس سے راضی ہیں اور دوسری طرف امت مسلمہ ہیں کہ 50 سال ان کو دیے گئے ان کی عمر کے اس میں گناہوں پہ گناہ ہیں عمر کم ہے امت محمدیہ کی تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عمار امت ما بین 60 الی 70 میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے درمیان میں یعنی ایوریج کوئی زیادہ بھی ہو سکتا ہے लेकिन उमूमन जो एवरेज निकाले जाएं तो 60 से 70 के दरमियान में निकलेंगे, ये है तनासुब। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने, चूंकि उम्र कम है इस उम्मत की, अच्छा पहले कद भी बहुत था हमारा, सही बुखारी में रिवायत है, जो कद होता था इंसान का वो काफ़ी ज़्यादा था, ज़माने के साथ साथ हम जो है ना पस्त कद होते चले गए, जैसे जैसे ज़माना कम हो गया वैसे हमारी उम्र भी कम हो गई, वैसे वैसे हमारी हाइट भी कम होती चली गई। पहले ज़माने में लंबे इंसान होते थे, हज़रत आदम भी बड़े लंबे कद के थे, और हज़रत मूसा के बारे में और फिर दीगर पैगम्बरों के बारे में, उनके कद के बारे में जो तफसीलात मिलती हैं वो लंबी हैं नस्बत उम्मत मुहम्मदिया के मुकाबले में। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो लैलतुल क़द्र हमको दी गई वो इस तनाजुर में दी गई है कि उम्र कम है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक अजीम रात दे दी कि इस उम्मत मुहम्मदिया कम वक्त में इबादत करके अल्लाह को मना ले, और इनका सवाब, इनका इतना सवाब इनको दे दिया जाए कि गुज़िश्ता उम्मतों से ज़्यादा इनका सवाब हो जाए। क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया में होने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की वजह से एक बेनिफिट हमको यह हासिल है कि सवाब इसका बहुत ज़्यादा रखा गया। हुजूर की उम्मत है ना, हुजूर अफजल हैं, हर एतबार से अफजल हैं, तो इस वजह से आपसे मंसूब हर चीज़ में अल्लाह पाक ने अफजलियत रखी है। आपसे मंसूब कलामुल्लाह है, सबसे अफजल है। आपसे मंसूब उम्मत है, सबसे अफजल है। आपसे मंसूब जो है ना अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक नाजिल किया, सबसे अफजल रात में लैलतुल क़द्र में कुरान पाक को नाजिल किया। जिस नबी पर नाजिल किया सबसे अफजल है, जो कलाम नाजिल किया वो सबसे अफजल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो चीज़ें अता फरमाई हैं वो अफजल चीज़ें अता फरमाई हैं। आपकी सिफात सबसे अफजल हैं, आपके अखलाक सबसे अफजल हैं, आपके किरदार सबसे अफजल हैं। तो उम्मत मुहम्मदिया भी अफजल अता फरमाई गई, और यह उम्मत मुहम्मदिया ऐसी है कि वो तो 500 साल इबादत करके सवाब कमा रहे हैं, हमको तो एक रात में अल्लाह पाक ने दे दिया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है, बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी कदर करने की चीज़ है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, ये मुबारक महीना ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला एक रात में इबादत करने का जो सवाब अता फरमाते हैं तो वो 1000 महीनों से ज़्यादा, 1000 रात भी नहीं है, महीनों से ज़्यादा अल्लाह पाक अजर अता फरमाते हैं ये। फिर उसके बाद फरमाया कि मन अद्दा मन तकर्रबा फ़ीही बिखसरत मिन अल्खैर काना का मन अद्दा फरीदतन फ़ीमा सिवा, एक नेकी का अगर कोई काम हम कर रहे हैं, नफिल काम हम कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाता है। और फ़र्ज़ के सवाब का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं है कि रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी का रोज़ा छूट जाए और वो उसके बाद ज़िंदगी भर अपने रोज़े की कज़ा करता रहे, उसकी तलाफ़ी करता रहे, शुक्रान उसकी कज़ा के तौर पर रोज़े अदा करते रहे, तो ज़िंदगी भर के रोज़े उस रमज़ान के एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ एक सबक हमारे लिए यह भी है कि रोज़े नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी के घर में इस तरह के लोग हैं समझाना चाहिए उनको, बूढ़े लोग अलग हैं, मजबूर अलग हैं, माजूर अलग हैं, उनके लिए तो शरीयत ने ख़ुद रुख्सत दी है, लेकिन एक तबका उम्मत का वो भी है रोज़ों को बड़े आसानी से ले लेते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे हैं, रोज़ों से नमाजों से उनको सरोकारी नहीं है। ज़िंदगी भर के रोज़े एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं कर सकते, फिर सालों से हम छोड़ते हुए रोज़े आ रहे हैं। और फिर उसके बाद फरमाया कि मन अद्दा फ़ीही फ़रीदतन काना का मन अद्दा सबईना फ़रीदतन फ़ी मा सिवा, जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज़ को अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो फ़र्ज़ का सवाब 70 दर्जे बढ़ गया, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो गया, ये अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत है। फिर उसके बाद फरमाया कि मन फ़तरफ़ी ही साइमन काना लहू मग़फ़िरतन लिदुनूबिही वईद क़रक़बतिही मिनन्नार, कि जो आदमी किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा देगा तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल गया उसके लिए, मग़फ़िरत हो गई उसके लिए। शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। शहरुल मुआसात, ये गमखारी का महीना है। शहरुन युज़ादु फ़ीही रिज़्क़ुल मोमिन, ये महीना वो महीना है कि जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। सब्र का महीना इस माना कर है कि ज़ाहरी एतबार से भी इंसान को बड़ा सब्र करना पड़ता है, सुबह से शाम तक जो है ना भूख प्यास लग रही है, तो पेट खाली होते ही आदमी में चिड़चिड़ापना शुरू हो जाता, गुस्सा आना शुरू हो जाता, मामूली गैर मामूली बातों पे जो है ना गुस्सा हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। फितरत है इंसान की, पेट भरा हुआ हो तो मस्त रहते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ हो जाती हैं, पेट खाली हो तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी मालूम होने लगती हैं। तो हो सकता है कि इंसान के लिए नागवारी की चीज़ें बहुत पेश आएँ इस महीने में, तो इसलिए फरमाया कि सब्र का महीना है, सब्र से रहना है। नागवारी की कोई बात पेश आ जाए, गुस्से वाली पेश आ जाए, तो सब्र कर ले आदमी। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ माशरे में यही चीज़ है कि सब माफ़, लेकिन ये माफ़ नहीं, सब गलतियाँ माफ़ है, ये गलती माफ़ नहीं होगी। हर गलती के बारे में हमारा कहना यही होता है, भाई सब्र कब करेंगे, फिर सब्र की फजीलत कब हासिल होगी, सब्र का अजर हमको कब हासिल होगा। बड़ी से बड़ी गलत, जितनी बड़ी गलती को आप माफ़ फरमाएंगे अल्लाह तबारक व ताला क़ियामत, या उस पर सब्र करेंगे, उतनी बड़ी गलती पर अल्लाह तबारक व ताला क़ियामत में आपकी पर्दापोशी फरमाएंगे। दुनिया में दरगुजर करने का मामला करें, अल्लाह पाक आखिरत में दरगुजर करेंगे। फिर तो इसलिए लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से, धोखा, इन चीज़ों से जो है ना बचना चाहिए। हदीस में ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर कोई शख्स लड़ने के लिए आ जाए तो उससे कह दे कि भाई इन साहब मैं रोजे से हूँ, बस मुझसे ना करें आप झगड़ा, अपने आप को किनारा कश कर ले, अपने आप को अलहदा कर ले। कोई एक फरीक झुक जाता है ना, लड़ाई उस वक्त होती है, ताली उस वक्त बजती है जब दोनों हाथ मिलते हैं। एक हाथ से अगर खाली हवा में हाथ फिरा लेंगे तो ताली नहीं बजेगी, आवाज़ नहीं आएगी। आप आके सामने उसके ठहरेंगे सामने वाले के, तब जाकर जो है ना लड़ाई शुरू होगी। एक ने अगर ज्यादती कर दी और आपने जो है ना सब्र का मामला कर लिया, नरमी के साथ पेश आ गए, माफ़ी माजरत कर ली जानते हुए कि मैं हक पर हूँ, फिर भी आप अपने आप को झुकाते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बड़ी फजीलत है उसकी भी। हदीस में है कि मन तरकल मिरा व हुवा मुहिक्कुन बुनिया लहू फी वस्तिल जन्ना, कि जो आदमी झगड़े को छोड़ देता है हक पर होते हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला वस्ते जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं, यानी जन्नत के दरमियान में महल अल्लाह पाक अता फरमाते हैं उस शख्स को। रोजे की हालत में तो इसकी बड़ी अहमियत है। तो इसी तरह रोजे में दीगर मुनकरात से भी बचने का एहतमाम होना चाहिए, झूठ से बचने का एहतमाम करें, गीबत से बचने का एहतमाम करें, दीगर और जो मुनकरात होते हैं उनसे बचने का एहतमाम करें, औकात को ज़ाया करने से जो है ना अपने आप को बचाएं। है ना कि हदीस में ये भी बात आपने इशारा फरमाई कि कितने ही रोजेदार ऐसे होते हैं कि रोजे में सिवाय भूख के उनको कोई हासिल नहीं होता, और कितने ही शब बेदार ऐसे होते हैं कि रात में जागने के अलावा कोई चीज़ उनको हासिल नहीं होती। मतलब यह है कि दिन भर रोजा रखा, नामे आमाल में कोई नेकी उनकी नहीं लिखी गई, रात भर इबादत कर ली, नामे आमाल में जो है ना कोई नेकी उनके यहाँ नहीं लिखी गई। क्यों? गुनाहों में मुबतला रहे सुबह और शाम। अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को जो है ना लोगों से दूर रखें। इसीलिए औलिया अल्लाह के यहाँ जो तर्तीब होती है वो यही थी कि लोगों से कम मिले, मिलेंगे तो बात करेंगे, बात करने में जो है ना झूठ बोल देंगे, गीबत कर देंगे इनके खिलाफ। अब हमारे यहाँ तो हालत ऐसी ही है, हमारी जो सूरत हाल है वो यही है कि दो दोस्त मिलते हैं, दो रिश्तेदार मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं, तो मसला ये है कि इनकी उनकी शुरू हो जाते हैं। गीबत है बड़ी वईद है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। अलगीबत अशद्दु मिनल कत्ल, हुजूर ने यह फरमाया कि कत्ल से बढ़कर यह गुनाह है। इसलिए रोजे की हालत में ख़ास तौर पर गीबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया बचे आदमी। फिर उसके बाद आगे आप सल्लम ने फरमाया कि रोजेदार को इफ्तार कराएं तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मगफिरत है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह कैसे हम इफ्तार कराएं? बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लैसा कुल्लुना नरिदु मा नफ्तरु बिहि सायम, कि हम में से बाद लोग वो भी हैं, या बाद दफ़ा ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि इफ्तार कराने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तर सायमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मदक़ति लबनिन, कि अल्लाह तबारक व ताला इफ्तार करवाने का जो सवाब है यानी मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी, ये उस शख्स को भी अता फरमा देते हैं जो किसी को एक घूंट पानी पिलाकर इफ्तार करवा दे, जो किसी को दूध का एक घूंट जो है ना पिलाकर इफ्तार करवा दे, जो किसी को खजूर एक खजूर के जरिए इफ्तार करवा दे। हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए भी मगफिरत होती है। इफ्तार इतनी बड़ी चीज़ है, तो इसलिए रमज़ान में ख़ास तौर पर इस बात का भी अहतमाम करना चाहिए कि अपने यहाँ इफ्तारी का अहतमाम हो और इंतज़ाम हो, घर में इंतज़ाम करें, घर में नहीं कर सकते हो तो मस्जिद भेजें, कहीं और हो सकता हो तो वहाँ नज़म करें, रोज़ेदारों को शामिल करें। बड़ी बरकत खिलाने से बरकत होती है, इस्लाम में ये है, जितना आप सदका करते जाएंगे, जितना आप खर्च करते जाएंगे तो उतना अल्लाह तबारक व ताला बरकत अता फरमाते जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम ही है, जो चीज़ जितना खर्च होती है उतना अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है और उतनी ही आसानी के साथ नाजिल होती है। हमारा यकीन होना चाहिए, बस ये चीज़ है। लोग कहते हैं कि गाय को न काटें, काटेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, पूजा हैं फुला हैं फुला हैं। जब से हमने काटना जो है ना हमने बंद कर दिया है, उस वक्त से क्या हुआ, पैदाइश जो है ना उनकी रुक गई है। बकरियों को हम खाते हैं, हज़ारों की तादाद में आज भी बकरियां कट कभी कमी नहीं हुई। मुर्गियों को हम खाते हैं तो कभी उसमें कमी नहीं हुई। जो जानवर अल्लाह ने हलाल किए हैं, जिनका उम्मत मुस्लिमा इस्तेमाल कर रही है, जिस कसरत से इस्तेमाल कर रही है उसी कसरत से अल्लाह पाक पैदा फरमा रहे हैं। यही निज़ाम अल्लाह पाक का हर चीज़ में है। जो चीज़ जितना ज़्यादा खर्च होती रहेगी अल्लाह पाक की तरफ से उतना ही नाजिल होता रहेगा। अल्लाह ऐसा नहीं है कि बंदों को कह दे खर्च कर दो और फिर उसके बाद बंदा फ़कीर होकर बैठ जाए। नहीं, वल्लाह मा नक़सत मालुम मिन सदक़ा। हुज़ूर ने फरमाया कि भाई अल्लाह की कसम सदक़े से माल में कभी कमी नहीं आती, खर्च करने से माल में कभी कमी नहीं आती। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है अपने दिलों को बड़ा करें, खिलाने पिलाने। रमज़ान में तो करना ही करना है, रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी इसका अहतमाम करना चाहिए, सदक़े का अहतमाम होना चाहिए, इताम होना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होने वाले असबाब में से एक सबब यह है कि खाना खिलाने के आदमी जो है ना आदि बने, लोगों को खाना खिलाए। इफ्शाए सलाम और इताम ताम तदखुलुल जन्नत अभी सलाम, हुजूर ने फरमाया कि ये ऐसे असबाब हैं कि अगर ये करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर फरमाया कि शहरुल मुआसात, ये गमखारी का महीना है, तो इसलिए गरीबों के लिए दस्तर को वसी कर देना चाहिए इस महीने में। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए दस्तर को वसी करें, अपने यहाँ उनके घर में इंतजाम, अगर आप नहीं बुला सकते हैं घर में किसी वजह से तो उनके घर में इंतजाम कर दें, घरों में भेज दें इफ्तारी, मस्जिदों में इफ्तारी भेजें। ज़रूरतमंदों का जो है ना ख्याल रखना चाहिए, उनका उनका लिहाज करना चाहिए, उनका इल्म रखना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि भाई हमारी बिरादरी में, हमारे हलके में, हमारे मेलजोल रखने वालों में कौन शख्स है जो ज़रूरतमंद है, और रखकर जो है ना फिर उनको भेजे, उनको दे, इफ्तारी भी दे, दीगर और ज़रूरियात जो हो सकती हैं वो अपने माल के ज़रिए पूरी करें। तो ये फरमाया कि शहरुल मुआसात ये गमखारी का महीना भी है, ये महीना ऐसा है कि विजा दुफी ही रिस्कुल मोमिन, मोमिन का रिस्क अल्लाह तबारक व ताला इसमें बढ़ा देते हैं। जितना आप खर्च करते जाएंगे आप देखेंगे खाने की मकदार, गरीब से गरीब आदमी होगा लेकिन सहर भी खा रहा है, इफ्तार भी खा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरकर खा रहा होता है। और पूरे रमज़ान में आप देखें, गौर देखें, रिस्क अल्लाह पाक देने वाले हैं। रिस्क के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप रिस्क को जो आप चाहें हासिल कर लें ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया से रिस्क आपके पास आ रहा होता है। एक मरतबा हजरत ने बड़ी अच्छी बात ये मिसाल में बयान फरमाई है कि रिस्क तुम्हारे पीछे आ रहा हो, रिस्क तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम जो है ना अपने मन से, अपनी मेहनत, अपनी जो है ना कमाई से जो है ना रिस्क को हासिल कर लो ऐसा नहीं है। आज हम बैठकर यहाँ पर दाल चावल खा रहे हैं, दाल कहाँ बन रही है, कहाँ बनती है? दाल का जो दाना है वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दीगर मुल्कों में बनता है, वहाँ उगाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनतें होती हैं वो मेहनत करने वाले जानते हैं। वहाँ से यानी सामान जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, नमक होता है, नमक यहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है, मिर्चें यहाँ बन रही है नहीं बन रही है, शकर शुगर यहाँ बन रही है नहीं बन रही, वो तो दुनिया के किसी किसी कोने में बन रही है, वहाँ से अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। पानी जो है ना यहाँ आपके पास घर में नहीं उग रहा है पानी, पानी तो आ रहा है समंदरों से और जहाँ से लोगों ने इंतजाम किया हुआ है, जहाँ अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, वहाँ से होते हुए, छनते हुए, साफ़ होते हुए, फिल्टर होते हुए हमारे पास आ रहा है, हम पी रहे हैं। हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर हमको हमारा रिस्क दिया जा रहा है। अगर हम चाहते कि वहाँ जाकर वो चीज़ हासिल कर लें तो हासिल नहीं कर सकते थे हम। तो रिस्क तो अल्लाह पाक हमको पहुँचा रहे हैं दुनिया से, हमारी कुव्वत और इस्तात ही में नहीं है कि अपनी मेहनत से अल्लाह के बनाए हुए रिस्क को हासिल कर लें हम। अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है, जितनी चीज़ें रोज़ाना की बेस पर हम खा रहे होते हैं तो क्या हमारे इख्तियार में उनको पैदा करना, उनको खाना, उनको हासिल करना नहीं है? चिकन आप खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है चिकन, कहाँ बन रहा है, कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ जी रहा है, कैसे जो है ना उसका वजूद हो रहा है, कैसे उसकी हयात हो रही है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, किस मुल्क में वो बन रहा है, किस मुल्क में जो है ना उसकी ग्रोथ हो रही है, वो तो किसी और मुल्क में है, यहाँ आपको बैठे बैठे हाथ में मिल गया। कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की नियामत जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाने पीने की हो, एक मिसाल में दे रहा हूँ, दवाएं हो, गिजाएं हो, नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जहाँ आपने कभी गया नहीं, उस खित्ते को कभी आपने देखा नहीं है, रिस्क तो अल्लाह पाक देते हैं। तो इसलिए अपने रिस्क को, अपने दस्तरखान को रमज़ान में भी, गैर रमज़ान में भी वसी करना चाहिए कि भाई आपका रिस्क तो आपको पहुँच रहा है, पानी आपको मिल रहा है, यहाँ आपके घर में अल्लाह ने सीधा डायरेक्ट पाइपलाइनिंग नाजिल नहीं कि आसमान से पानी नाजिल हो रहा है, ऐसा नहीं है। पानी तो कहीं और, कोई और लेक से पानी आपको मिल रहा है, कोई और समंदर से पानी आपको मिल रहा है, कहीं और से अल्लाह पाक ने वो निज़ाम बनाया हुआ है। तो रोज़ी आपको आपको ढूंढते हुए आ जाती है आपके पास, खाना आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाता है, पानी आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाता है। तो इसलिए खर्च करने के सिलसिले में, देने के सिलसिले में खास तौर पर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कमी हो जाएगी या फिर देंगे तो भाई खर्च का निज़ाम कैसे चलेगा, नहीं, जितना देंगे अल्लाह पाक भी आपको उतना देंगे। अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर ने फरमाया था कि गिन गिन का खर्च करोगे तो अल्लाह भी तुम पर गिन गिन का खर्च करेगा, और अगर तुम बगैर गिनों के खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक भी तुम्हारे ऊपर बगैर गिने खर्च करेंगे फिर। तो अल्लाह का निज़ाम ही यही होता है। तो इसलिए एक दरख्वास्त आप हजरात से इस मौके पर यह भी है कि खासतौर पर रमज़ान में यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम होता है और बाद दफ़ा सहर का भी इंतजाम होता है, शरिया बोर्ड में भी वहाँ पर सहर इफ्तार का हसब जरूरत इंतजाम और अहतमाम हुआ करता है। तो इसलिए आप रोज़ेदारों को खिलाएं, और इसकी बड़ी फजीलत है, रमज़ान में तो वैसे भी सवाब ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह पाक ज़ाहिरी एतबार से भी जो है ना अजर सवाब अता फरमाएंगे, जन्नत में भी अल्लाह पाक रमज़ान की मुनासिबत से बेशबहा जो है ना अजर अता फरमाएंगे। तो इसका अहतमाम करना चाहिए, वक्त हो चुका है, और भी चीज़ें हैं, हम सुनते रहते हैं रमज़ान के हवाले से। अल्लाह पाक हम सबको सही इल्म, सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए, माह रमज़ान की कद्र की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए, गुनाहों से अल्लाह तबारक व ताला इस माह में जो है हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।